नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे लगभग 25,74,000 से अधिक नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी के निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 के 76 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 के अंत तक 1 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6,90,00,000 लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा 30,16,00,000 रोजगार सृजित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद श्रमिकों को प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल एल्वारेस ब्यूनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए।
It is more imperative than ever before.
राष्ट्र के लिए चुनौतियों को हासिल करना बेहद जरूरी है। भारत और स्पेन आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और बढ़ती आर्थिक साझेदारी के आधार पर भारत स्पेन के संबंधों को मजबूत करना होगा।
स्पेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने भारत और स्पेन के बीच संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दोहरे वर्ष की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस पहल से भारत और स्पेन के मध्य मजबूत सांस्कृतिक संबंधों, आपसी जुड़ाव, पर्यटन के अवसरों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियमित करने के लिए केवल कानूनों का प्रयोग ही नहीं बल्कि तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने डीप फेक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया।
प्योर इलेक्टोरल रोल, प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्टोरल रोल।
विद्युत मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी कर दिया। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। मंत्रालय के अनुसार इस नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट घंटे और 2047 तक 4000 किलोवाट घंटे से अधिक करना है। ये नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। प्रयागराज के पास बमरौली वायुसेना स्टेशन से नियमित उड़ान पर गए वायुसेना के एक माइक्रोलाइट विमान को निर्जन क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 10,000 लोग विशेष अतिथि के रूप में परेड देखेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।